हम लोग ये जानते हैं भगवान आके धर्म को स्थापना करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। लेकिन वही भगवान जिसके वर्णन कहा गया है कि जिन्होंने कहा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रकट होता हूँ, वही भगवान अंत में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्या मामेकम शरणम। दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण भगवद्गीता में इस बात को कहते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है, हर प्रकार का धर्म को त्याग करके मेरा शरण ग्रहण करना ही वास्तविक धर्म है। द ओनली धर्म इज टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्ण, बाकी सब जितने भी धर्म हैं वो अधर्म है। तो ये बात को प्रचार करने के लिए कैसे प्रचार करना चाहते हैं, आचरण करके प्रचार करने के लिए वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वही बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। चैतन्य चरितामृत के पहले की जो 14 श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। ये पूरा चैतन्य चरितामृत का मंगलाचरण है। इसमें प्रथम 6 श्लोक है वो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करने वाला श्लोक है। उसके बाद 4 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु का वर्णन है। अभी देखते हैं नित्यानंद प्रभु का वर्णन करने वाले क्या श्लोक है और नित्यानंद प्रभु के तत्व का विचार आज करेंगे और कल से आपको नित्यानंद प्रभु लीलाओं को श्रवण कराया जाएगा और रविवार को तो और नित्यानंद प्रभु लीलाओं को हम चर्चा करेंगे। संकर्षण कारणो तो ईशाई गर्भो दशाई पयोधिशाई शेष से कड़ाश नित्या अंदाक्य रामं शरणं ममस्तु। मायातीते व्यापि वैकुंठलोके पूर्णेश्वरे श्रीचतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं संत्यानंद रामं प्रपद्ये। मायावर्ता जंडसंगाश्रयांगः सेति साक्षात्कारणाम्भोधि मध्ये यस्यैकांश श्रीपुमानादि देवस् तन्नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सांश शीलगर्भोदशायी यन्याब्जम लोकसंगातनालम लोकसुस्तुतिगाधाम धातुः तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। यस्यां सांश परमात्मकिनानां कोष्ठा विस्तर्भाति दुग्धाब्धिशायी कौशिभत्ता यत्कालस्योऽप्यनन्तः तं श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। तो ये 5 श्लोक में 7, 8, 9, 10, 11 आदि लीला के इन 5 श्लोकों में वर्णन हुआ है नित्यानंद प्रभु का तत्व। कौन है नित्यानंद प्रभु? मायातीते व्यापि वैकुंठ लोके पूर्णेश्वरे श्री चतुर्व्यूह मध्ये रूपम यस्योद्भाति संकर्षणाख्यम तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। जिसको हम संकर्षण करके जानते हैं वही नित्यानंद है। कौन है संकर्षण? मायातीते, माया से परे व्यापी वैकुंठ लोक है। वैकुंठ के अनेकों लोक है। इस भौतिक जगत में अनेकों लोक है, इस भौतिक जगत से परे और एक है आध्यात्मिक जगत, उसमें भी अनेकों अनेकों लोक है। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोक है। उन वैकुंठ लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ लोक है वो है कृष्ण लोक। इस कृष्ण लोक में 3 विभाग है, गोकुल और गोलोक, मथुरा और द्वारका, 3 विभाजन। तो गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण निवास करते हैं माधुर्य स्वरूप में, और वही कृष्ण मथुरा और द्वारका में ऐश्वर्य स्वरूप में निवास करते हैं। कृष्ण 3 जगह है, ऐश्वर्य स्वरूप में मथुरा द्वारका में है, और वही कृष्ण माधुर्य स्वरूप में वृंदावन गोलोक वृंदावन धाम में है। तो वही कृष्ण अपने आप को विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, और बलराम विस्तार करते हैं संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध और वासुदेव के रूप में। और चतुर्व्यूह मध्य, ये चतुर्व्यूह के बीच में या द्वितीय चतुर्व्यूह के रूप बीच में जो संकर्षण है, ये महासंकर्षण है। वो महासंकर्षण कोई और नहीं है, वही नित्यानंद प्रभु है। यानी दूसरे शब्दों में बलराम जी ही नित्यानंद प्रभु है। आगे नित्यानंद प्रभु के बारे में कहते हैं, माया बर्था जन संगाश्रयांग सीति साक्षात कारणाम बोधि मध्य यस्यैकांश श्रीमानादि देवस्तम श्री नित्यानंदम नामं प्रपद्ये। यस्यैकांश, यही नित्यानंद का एक अंश मात्र है। कौन है वो? कारणोदाक्षय विष्णु, जो कारण सागर के मध्य में लेटे हुए जो विष्णु हैं, वो नित्यानंद प्रभु के एक अंश मात्र है, जिनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। एक बार वो सांस छोड़ेंगे, जितने भी रोमकूट हैं उनके रोमकूपों से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये महाविष्णु हैं। महाविष्णु या कारणोदाक्ष विष्णु कौन है? नित्यानंद प्रभु का अंश है। और आगे ये एकांश शील गर्भोदशाई, ये गर्भोदाक्ष विष्णु कौन है? वो उनके अंश के अंश है। ये श्याम श्याम शील गर्भोदशाई, यानी तीन विष्णु हैं, कारणोदाक्ष विष्णु, गर्भोदाक्ष विष्णु, शिरोदाक्ष विष्णु। ये कारणोदाक्ष विष्णु जो है वो नित्यानंद प्रभु के अंश है, और नित्यानंद प्रभु के अंश कौन है? गर्भोदाक्ष विष्णु। इन्नाभ्यम लोकसंगात नालम लोक सृष्टि का धाम रात, पूरा लोकों को सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी जो है वो कहां प्रकट हुए? उनके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ जो कमल है, नाभि से उत्पन्न हुआ कमल है, वो कमल के अंदर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और ये जो गर्भोदक विष्णु है वो नित्यानंद प्रभु के कौन है? ये श्याम श्याम शह अंश के अंश है। आगे और वही विष्णु, तीसरे विष्णु कौन है? वो है क्षीरोदाक्ष विष्णु। ये श्याम 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 शाह परमात्मा किला नाम पोष्ट विष्णुभाद दुग्धाधिशाई कौस्त बत्ता कालस्य परंत नित्यानंद राम त्वम प्रति। मैं वैसे नित्यानंद राम को प्रणाम करता हूं जिनके अंश के अंश के अंश कौन है? वो है परमात्मा है। सबके हृदय में जो परमात्मा के रूप में बैठे हैं वो कौन है? वो क्षीरोदाक्ष विष्णु। यही क्षीरोदाक्ष विष्णु वो नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश है। और नित्यानंद प्रभु कौन है? अभी चर्चा किया बलराम है। बलराम जी कृष्ण का हमेशा सेवा करते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है उनका एकमात्र उद्देश्य है। जैसे बलराम जी हमारे गुरु तत्व है, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु तत्व है। ही इज रियल गुरु तत्व। जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता है, जैसे गुरु की कृपा के बिना भगवान प्राप्त नहीं होते, वैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना हमको भगवान प्राप्त नहीं होता है, चैतन्य महाप्रभु प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार इधर तत्व का निरूपण हुआ है। तत्व का निरूपण का अर्थ यह है कि यही नित्यानंद, यही बलराम नित्यानंद प्रभु रूप में आए और वही नित्यानंद प्रभु है ये तीन विष्णु। और साथ साथ में बलराम जी अपने आप को विस्तार करते हैं अनंत शेष के रूप में, आलस्योत्यनंत अनंत अनंत देव। अनंत देव क्या कर रहे हैं? अनंत काल से अनंत गुणों होने वाले भगवान का अनंत गुणों का वर्णन कर रहे हैं। इतने कालों से वर्णन करने के बाद भी ऐसा हो रहा है कि उनको एक गुण का भी वर्णन पूरा नहीं हो पाए। ये भगवान की गुणों का अनंत शक्ति है। तो ये अनंत देव भी कौन है? बलराम जी के विस्तार है, बलराम जी के एक्सपेंशन है, या नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। और इधर हम मंदिर देखते हैं, ये मंदिर भी नित्यानंद प्रभु का विस्तार है। करताल है, मृदंग है, ये सब जितने भगवान की सेवा में लगते हैं, ऐसा माना जाता है कि मानने की बात क्या है, ये सही बात है कि नित्यानंद प्रभु के विस्तार है। इसलिए जब मंदिर में बैठे तो मंदिर का सहारा नहीं लेना चाहिए, मंदिर का सेवा करना चाहिए, उसका सेवा लेना नहीं चाहिए। क्यों? ये नित्यानंद प्रभु की विस्तार है। नित्यानंद प्रभु भगवान को जैसे बलराम जी हर प्रकार के रस में सेवा करते हैं, उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को हर तरीके से सेवा करते हैं। कभी वात्सल्य दिखाते हैं, कभी साक्ष्य दिखाते हैं, और वही नित्यानंद प्रभु कभी वो चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु पूर्ण तरीके से जैसे बलराम जी कृष्ण को सेवा करते हैं, वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को सेवा करते हैं। कृष्ण और बलराम के बीच में अंतर क्या है? कृष्ण जो है वो सेव्य भगवान है और बलराम जी है वो है सेवक भगवान। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु वो सेव्य भगवान है, लेकिन वैसे ही नित्यानंद प्रभु वो सेवक भगवान है। नित्यानंद प्रभु अपने हमेशा अपने आप को सेवक मानते हैं। नित्यानंद प्रभु एक चक्र में उनका प्राकट्य हुआ, वैसे उनकी लीलाओं को बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना चाहिए। नित्यानंद प्रभु जैसे राय पंडित के घर में जन्म लिए एक चक्र में, एक दिन ऐसा हुआ उनके घर में एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण आके तुमने कहा कि ब्राह्मण को जैसे कहा जाता है कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए बताइए। ने कहा मुझे आपको नित्यानंद प्रभु जो है उनको दे दीजिएगा। उनकी माता को बहुत दुख लगा। सर नित्यानंद प्रभु वो उस ब्राह्मण के साथ चले गए और अवधूत बन गए और हर जगह भ्रमण करने लगे। कहां कहां भ्रमण किए उसका लिस्ट तो लीला में आएगी। हर जगह भ्रमण किए नित्यानंद प्रभु, तो वो जगन्नाथपुरी आए तो उन्होंने देखा रे कृष्ण के साथ बलराम जी हैं। बलराम जी को तो बलराम भी जगन्नाथपुरी नहीं गए थे, उनको अच्छा ही लग रहा था। ये क्या है, कृष्ण के बराबर मेरा सेवा हो रहा है, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। तो ये नित्यानंद प्रभु का भाव ऐसा है कि चैतन्य महाप्रभु मेरे सेवी भगवान हैं, उनको सेवा करना चाहिए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है और चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन करते हैं, जब तक नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं होता तब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता, चैतन्य महाप्रभु द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु का एक शिष्य जिसका नाम था निमिकेतन रामदास, रामदास रोज आया करता था, आया करते थे उनके घर में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी घर में, और अनेकों को मधुर लीलाएं सुनाते थे, भाव योग नृत्य करते थे, सब लोग आने देते, सबको आशीर्वाद देते, सबको मुस्कुराते हुए सबको आनंद प्रदान करते थे। जब वो नितांत करके पुकार देते सबको हृदय में आनंद का अनुभव होता था। एक दिन जब उनके घर में आए उस समय कोई नहीं था, तो उस घर में एक पुजारी था। ये पुजारी ब्राह्मण था, वो पूजा कर रहा था और रामदास निकेतन रामदास को उन्होंने स्वागत नहीं किया। शास्त्र में ऐसा वर्णन है, मान लो कोई वैष्णव आते हैं आपके घर में, उस समय आप पूजा कर रहे हो तो भगवान का पूजा को उस समय छोड़ के उस वैष्णव का स्वागत करना चाहिए, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा मेरे भक्त का जो सेवा है वो अति महत्वपूर्ण है मेरे सेवा से। जैसे आज पुराण में है, भगवान कहते हैं अर्जुन को, हिमे भक्त जना पार्ता नमे भक्त सचेतना मद भक्ता नाम से भक्त तिमे भक्त स्वामता। हे अर्जुन मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मेरा भक्त का जो भक्त होता है वास्तविकता है मेरा भक्त है। तो निकेतन रामदास को बहुत क्रोध आया, उन्होंने बहुत डांटा उस पुजारी को। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है उनको अच्छा ही लग रहा था, ऐसा मेरे घर में इस प्रकार हुआ, तो उन्हें बहुत माफी मांगा कि ऐसे ऐसे हो गया। बाद में उस पुजारी को बहुत डांटा तो नित्यानंद प्रभु बहुत प्रसन्न हो गए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की ये बात को देखिए। और दूसरा बात ये था, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के जो भाई हैं उनका पूर्ण विश्वास था चैतन्य महाप्रभु में, लेकिन नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं था। तब कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनकी भाई को बहुत डांटे, तुम्हारा इस प्रकार की जो वर्ताव है चैतन्य महाप्रभु में विश्वास है लेकिन नित्यानंद प्रभु में विश्वास नहीं है, ये वर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है, ये जो है अर्ध कुकुर न्याय के बराबर है। ये जो न्याय है कि एक मुर्गी था रोज सोने का अंडा देता था, पति ने कहा पत्नी को मैं जा रहा हूं थोड़ा इसको देखभाल करो, रोज सोने का अंडा देता है इसको संभाल के रखो। पत्नी ने सोची अगले दिन ये तो रोज मुंह से खाती है और पीछे से अंडा देती है, आगे वाला भाग जो है हमारा नुकसान का है, पीछे वाला भाग जो उसको फायदा का है, इसलिए मैं क्या करूंगी उसको आगे वाला भाग को काट दूंगी और उसको खा लूंगी और पीछे वाला भाग जो है वो मैं रखूंगी। ने ऐसा काट दिया और पीछे वाला भाग को रखा तो कल सुबह देखती है कुछ अंडा ही नहीं आ रहा है। पति आने के बाद उन्होंने कहा, पूछा कहाँ है, क्या क्या हो गया? पति ने कहा कि मैंने ऐसा किया, अंडा नहीं आ रहा है अभी। तो ऐसे ही ये जो भाई है, कौन, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, ये दोनों एक ही है। इन दोनों में जो भेद रखता है उनका बुद्धि नाश है, उनका बुद्धि भ्रष्ट होता है। जैसे उनकी भाई तो खूब डांटे, जब ये बात मालूम पड़ा निमिकेतन रामदास को, उस दिन निमिकेतन रामदास आए और उनके भाई को बहुत क्रोध से गुस्से से उन्हें देखा, नित्यानंद प्रभु के ऊपर तुम्हारा विश्वास नहीं है, चलो मैं तुम्हारा डंडा तोड़ देता, मैं अपनी वंशी तोड़ देता हूं। उनके पास एक बांसुरी था, वो बांसुरी उन्होंने जैसे तोड़ दिया तो क्या हुआ, कृष्णा सेवा भाई भाई जो है वैसे बेहोश गिर पड़े। नित्यानंद प्रभु के जो सेवक होते हैं उनका विशेष शक्ति है, ऐसा शक्ति है नित्यानंद प्रभु सेवक का, वो कुछ भी कर सकते हैं, सारा ब्रह्मांड को तार सकते हैं। नित्यानंद प्रभु के जो शिष्य होते हैं उनके संगी होते हैं ये साधारण नहीं है। नित्यानंद प्रभु जो कृपा प्राप्त हुआ वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। दूसरे शब्दों में हमारे जो गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि हैं, और जिनको गुरु का कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, इतना शक्तिशाली हो सकता है, इतना शक्ति हो सकता है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकता है, कितना ही ब्रह्मांड को तार सकता है, कुछ भी महान कार्य कर सकता है। यत कृपा तमहम मंदे श्री गुरु दूरत दीन तारण, ऐसे हम श्लोक में बोलते हैं, अंगुम लंगाए थे गिरिम, अगर लंगड़ा व्यक्ति भी वो पहाड़ तार पार कर सकता है, अंगुम लंगाए थे गिरिम मुकम करो दि वाचाल, मुख व्यक्ति बोलना शुरू कर सकता है, गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए, जो नित्यानंद का आशीर्वाद है ऐसा कर सकता है। तो कृष्णदास के राज अच्छा ही लग रहा था, मेरे घर में पुजारी ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु के सेवक को उन्होंने अपराध किया उनके प्रति, और मेरे भाई स्वयं नित्यानंद प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है, मैं क्या करूं। ऐसे बहुत रोते रोते वो सो गए। उस रात को नित्यानंद प्रभु सपने में आए, सपने में आके कृष्णदास के राज स्वामी को बहुत प्रसन्न हुए, ने कहा कि जिस व्यक्ति का मेरे प्रति इस प्रकार की विश्वास है, और मेरे प्रति जिसका विश्वास नहीं उनको आपने डांटा आपके भाई होने पर भी, और आपका जो पुजारी ब्राह्मण है आपने उनको डांटा क्योंकि आपने उन्होंने मेरे इस सेवक के प्रति अपराध किया, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप जाओ वृंदावन में रूप सनातन का संगति करो, रूप सनातन ग्रंथों को पढ़ो और मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, तुम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिखोगे। ये जो चैतन्य चरिता जो हमको प्राप्त है वो किसकी कृपा से प्राप्त है? वो नित्यानंद प्रभु स्वयं ने शक्ति प्रदान किया, चैतन्य लीलाओं को वर्णन करने की शक्ति नित्यानंद प्रभु ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रदान किया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े आनंदित होकर जाते वृंदावन और कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे मदन गोपाल का सेवा प्राप्त हुआ। नित्यानंद प्रभु वृंदावन में जब गए थे वो उनका भजन कुटीर सेवा कुंज में, सेवा कुंज में नित्यानंद प्रभु भजन करते थे और इंतजार कर रहे थे कब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे नवद्वीप में। अभी जाएंगे सेवा कुंज में, आपको सेवा कुंज में श्रृंगारवट, सेवा कुंज के पीछे श्रृंगारवट, श्रृंगारवट में बैठ के नित्यानंद प्रभु भजन करते थे और उनका नित्यानंद प्रभु का डंडा उधर है। नित्यानंद प्रभु के वंश के जो लोग हैं उधर का जो सेवा पूजा वगैरह संभालते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का कृपा से ही कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य लीलाओं को वर्णन कर पाए। चैतन्य महाप्रभु को प्राप्ति हो, उनका कृपा की प्राप्ति हो, या चैतन्य लीला का वर्णन भी क्यों ना हो, वो केवल नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही हो सकता है। चैतन्य चरितामृत का प्राप्ति भी हमको केवल नित्यानंद प्रभु कृपा की वजह से प्राप्त हुआ। ये नित्यानंद तत्व है। और ये बहुत सारी लीलाएं जिसके अंदर चैतन्य महाप्रभु का कृपा, चैतन्य महाप्रभु का प्राप्ति केवल नित्यानंद प्रभु की वजह से हुआ। रूप सनातन जब पहुंचे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, राम के लिए ग्राम में पहली बार मुलाकात होने वाला है, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु से मिले। तो नित्यानंद प्रभु से जैसे मिले तो नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण को रूप सनातन के ऊपर रखे, तब उनका मुलाकात चैतन्य महाप्रभु से हुआ। बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी उनका भी कृपा को प्राप्त हुआ। जब नित्यानंद प्रभु के पास जब गए, नित्यानंद प्रभु का सेवा किए, दही चूड़ा का उत्सव मनाए, मनाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचे, नित्यानंद प्रभु ने तुरंत उन्हें खींचा, खींच के अपने सर के ऊपर पैर रखा। तब रघुनाथ दास गोस्वामी कृपा प्राप्त हुआ। वैसे ही जितने भी भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा केवल नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो नित्यानंद प्रभु को अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय कहा गया है। अक्रोध चैतन्य महाप्रभु कभी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को क्रोधित नहीं होते, हिलने पर भी कमाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जिगाय मदाय के समय, उद्धार के समय, लीला तो बाद में विस्तार से सुनेंगे, उस समय जगाए मदाय को मारने के लिए, क्योंकि नित्यानंद को मार दिया था, उनको खून निकल रहा था, महाप्रभु क्रोधित हो गए। करुणावतार नमो महावदान न्याय, वो महाप्रभु जैसे क्रोधित हो गए, तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने कहा आप क्रोधित हो जाएंगे। इस अवतार में आप जो है पाप को मारते हो, पापियों को नहीं मारते हो, ये नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु का बात सुन के चैतन्य महाप्रभु जो है वो शांत हो गए। वैसे नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का दंडा तोड़ दिया था एक बार, जब सन्यास ले गए, चैतन्य महाप्रभु जा रहे, पहुंच रहे, हाँ, जगन्नाथपुरी की ओर। जगन्नाथपुरी की ओर पहुंचने से पहले महाप्रभु को जाना था कुछ कार्य करने के लिए, नित्य कार्य करने के लिए। तो ने कहा नित्यानंद प्रभु मेरा सन्यास दंडा रखो और उस दंडे को आप रखो, संभालो, मैं आता हूं। चैतन्य महाप्रभु गए, वापस जब आए, साथ साथ जगन्नाथ की पुरी को जा रहे, उसने महाप्रभु ने पूछा मेरा डंडा कहाँ, सन्यास डंडा। नित्यानंद प्रभु ने कहा मैंने इसको तोड़ दिया, तीन भाग करके तोड़ दिया। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोधित हो गए नित्यानंद प्रभु के ऊपर। नित्यानंद प्रभु शांत रहे, नित्यानंद प्रभु क्यों तोड़े, ये सारे जगत को दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, और भगवान जो है वो तीनों गुणों से परे हैं और वर्णाश्रम से परे हैं। यह सन्यास जो है वर्णाश्रम के अंतर्गत आता है। वर्णाश्रम के अंतर्गत आने के नाते चैतन्य महाप्रभु भगवान है, तो उनको सन्यास की क्या आवश्यकता है, सन्यास इससे परे है वो। तो इस कारण की वजह से नित्यानंद प्रभु ने उसके दंडे को तोड़ दिए थे। तो नित्यानंद प्रभु के अनेकों लीलाएं हैं, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का मिलन बड़ा अद्भुत मिलन है। इस मिलन का लंबा छोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसका सिद्धांत को चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। जब नित्यानंद प्रभु को मालूम पड़ा चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, केवल नित्यानंद प्रभु अलग अलग जगह भ्रमण इसलिए कर रहे थे, केवल ये बात को सुनने के लिए, जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो तब मैं जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, फर मिल गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित का लीला कर रहे हैं, महाप्रभु निमाय पंडित लीला कर रहे, नित्यानंद प्रभु इंतजार कर रहे। कब महाप्रभु जो है वो अपने भक्त का लीला को प्रकाशित करेंगे। जब महाप्रभु भक्त का लीला प्रकाशित करना शुरू किया, तो नित्यानंद प्रभु पहुंचे नवद्वीप। नवद्वीप में आके नंदनाचार्य घर में छुप गए। नंदनाचार्य घर जो है इस्कॉन से थोड़ा बाहर निकलेंगे, नवद्वीप में लेफ्ट टर्न लीजिएगा, थोड़ा सा दूर में नंदनाचार्य भवन है, गौड़िया मठ है, उसके अंदर वही नंदनाचार्य के भवन है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने संगियों को बुलाया, ने कहा कि मैंने सपने में देखा एक बहुत अद्भुत सुंदर व्यक्ति, नीले वस्त्र धारण किए हुए है, एक महापुरुष है, नवद्वीप में प्रवेश किए, आप सब लोग जाके ढूंढो। सब लोग ढूंढ ढूंढ के थक गए, परेशान हो गए, वापस आके कहा हमको कहीं नहीं मिले। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा चलो मैं आपको दिखाऊंगा। सीधा नंदनाचार्य घर में पहुंचे, और जैसे उधर पहुंचे तो तुरंत नित्यानंद प्रभु दिखाई पड़े, और सब लोग नित्यानंद प्रभु को देखे एकदम अचंभित हो गए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देखे, चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता को देख के नित्यानंद प्रभु तुरंत सारे इंद्रियों के द्वारा आस्वादन करने लगे, अपनी जीवा से आस्वादन करने लगे, अपनी आंखों से आस्वादन करने लगे, इतना सुंदरता को पीने लगे अपनी आंखों से जैसे महाप्रभु ने पूछा, मैं नित्यानंद प्रभु कौन है, कितने महान भक्त है, मैं उसको प्रकाशित करना चाहता हूं और ये भी दिखाना चाहता हूं कि आप अपने बलबूते नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं सकते हो। कोई सोचे कि मैं गुरु को पहचानूंगा, नहीं हो पाएगा। दूसरा कोई व्यक्ति सोचे मैं गुरु को ढूंढने जाऊंगा, ढूंढ नहीं पाएगा। भगवान की गुरु कृपा से गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। ये सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं कि सब नवद्वीपवासियों को नित्यानंद का प्राप्ति कैसे हुआ, चैतन्य महाप्रभु की वजह से हुआ। अपने आप से ढूंढने जाएंगे गुरु को उन्हें नहीं मिलेगा। हमारे हृदय में जिस प्रकार की श्रद्धा है उस श्रद्धा के अनुसार गुरु प्राप्त होते हैं। भगवान हमारे जीवन में गुरु भेजते हैं और वही गुरु भगवान की प्राप्ति कराते हैं। और इधर चैतन्य महाप्रभु प्रकाशित करना चाहते हैं नित्यानंद का महिमा क्या है, गुरु कौन कैसे होना चाहिए या गुरु का तत्व क्या है। तो उन्होंने श्रीवास पंडित को कहा, श्रीवास पंडित आप एक श्लोक उच्चारण करो भागवतम से। ये श्रीवास ठाकुर ने बहुत सुंदर श्लोक उच्चारण किया, परहापीडम नटवत शरण्यो शरणिकारम। भागवत में वर्णन है किस प्रकार शिष्ट का नटवर वपु शरण्यो और कर्णिकार, उनके कान में कर्णिकार, ऐसे उनका पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं, किस प्रकार उनकी सुंदरता का वर्णन किए, जैसे वर्णन किए। नित्यानंद प्रभु श्लोक को सुनते बेहोश हो गए और कुछ समय के बाद फिर होश में आए और एक श्लोक को सुनाए। नित्यानंद प्रभु एकदम पूरा भाव विभोर नृत्य करने लगे, इतना ऊपर उद्दंड कीर्तन किए, ऊपर कूदे, सब लोग अभिभूत हो गए। अरे क्या हो गया, ये तो आश्चर्य वाली बात है, मतलब नीचे गिर पड़े तब लोगों ने कुछ तो हुआ नहीं ना उनको। फिर वापस भी होश हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने और श्लोक उच्चारण को भागवत से और श्लोक उच्चारण के नित्यानंद प्रभु वापस वो सचेत अवस्था में आए, वापस उस समय मूर्छित हो गए। ऐसा बहुत लंबा समय तक चला। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके नित्यानंद प्रभु आलिंगन किया, गुरु का परिचय है। किस प्रकार भागवत के श्लोकों को सुन के उनके अंदर सारे भक्ति के लक्षण जो है वो प्रकाशित हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने सारे नवद्वीप वासियों को शिक्षा देना चाहते थे और उसके द्वारा सारे लोगों को शिक्षा दे रहे नित्यानंद प्रभु कौन है। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, उनके ऊपर ऐसा विश्वास होना चाहिए जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को सिखाया। ऐसे नित्यानंद प्रभु जो है वो अवधूत है। अवधूत का अर्थ है कि जिनकी कार्यकलाप को वर्णन नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, कभी कुछ भी कर सकते। कभी कभी वो गंगा में कूद के उधर के मगरमच्छ के साथ खेलते हैं और कभी कभी एकदम सुंदर अपने आप को सजा के नवद्वीप में घूम रहे हैं, कभी कभी वो नग्न घूमते हैं। कृष्ण प्रेम में मदमत नित्यानंद प्रभु उनको अपने होश में नहीं रहते, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे कोई बाह्य चेतना है ही नहीं। तो ऐसे वो दूत एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के पास गए। कहा, श्रीवास ठाकुर क्या कर रहे हो तुम, ये जो नित्यानंद प्रभु हैं उनको अपने घर में रखे हो, इसका जात पात कुछ नहीं मालूम और इसका ये तो अवधूत कुछ भी कुछ करता है, पागल जैसा व्यवहार करता है, इसको क्यों अपना है अपने घर में रखे हो, तुम्हारा नाम खराब होगा। श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु कहा, अगर मैं नित्यानंद प्रभु को देखूंगा, ये शराब खाने से बाहर निकल रहे तो भी उनके प्रति मेरा विश्वास है वो कभी कम नहीं होगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को सुने श्रीवास ठाकुर से, तब श्रीवास ठाकुर ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रीवास ठाकुर को, श्रीवास तुम्हारा ये जो विश्वास है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, इसको देख के मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं आशीर्वाद देता हूं। भले ही लक्ष्मी स्वयं वो घर घर भीख मांगने के लिए जाए, ऐसी अवस्था हो सकती है लक्ष्मी को। अगर लक्ष्मी का भी ऐसी अवस्था हो घर घर जाके भीख मांगे, लक्ष्मी जी कौन है, सारा धन ऐश्वर्य संपत्ति का अधिष्ठात देवी है, वो कभी भिखारी हो सकती है, भिखारी नहीं हो सकती है, नहीं। अगर मान लो लक्ष्मी भी भिखारिन हो गई, फिर भी शिवा ठाकुर तुम्हारा ये जो विश्वास है नित्यानंद प्रभु के ऊपर, ऐसा विश्वास है अगर लक्ष्मी भी भीख मांगने के लिए जाए लेकिन तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, ये नित्यानंद प्रभु का ऊपर विश्वास का नतीजा है। नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। तो ऐसे ही हमको गुरु तत्व या गुरु के ऊपर ऐसा विश्वास होना चाहिए। इस प्रकार का गुरु में विश्वास जिसका होता है उनके जीवन में कोई भी चीज की कमी नहीं होता है, हर चीज जो चाहिए हर चीज की समृद्धि प्राप्त होता है। ये नित्यानंद प्रभु का ये लीलाएं, नित्यानंद प्रभु सची माव और शिवास ठाकुर मालिनी, शिवास ठाकुर की पत्नी मालिनी, इन दोनों के बीच उनको वात्सल्य था। कभी कभी मालिनी के पास जाते नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मुझे दूध पिलाओ, और मालिनी नित्यानंद प्रभु को वात्सल्य भाव में दूध पिलाती है। और उनका जो कार्यकलाप है हम कभी भी सोच नहीं सकते कब क्या करते नित्यानंद प्रभु। एक दिन गंगा में कूद के नित्यानंद प्रभु उधर बहुत सारे इनके साथ मगरमच्छ के साथ खेल रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत आए, आगे बोला नित्यानंद चलो तुम्हारा गुरु पूजा करना है। नित्यानंद प्रभु को बैठा के सिंहासन के ऊपर सब लोग गुरु पूजा करने लगे, क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा था, क्योंकि मूल गुरु है नित्यानंद प्रभु। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अनेकों अनेकों लीलाएं नवद्वीप पे करते रहे। महाप्रभु ने टीम बनाया था नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर का, इन दोनों का टीम बनाकर उन्होंने कहा कि आप जाओ जाके आप हर घर 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 जाके जितने भी दीनहीन होता है उन सबको जाके प्रचार करो, उन सबको हरिनाम प्रदान करो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये दोनों जहां जहां सबसे दीन होते उधर जाके प्रचार करने लगे। जगाए मजार का उद्धार जो है ऐसा जगह में जाए कहते हैं भगवान आपने अनेकों अनेकों लोगों को उद्धार किया। वो उद्धार क्यों हुआ? नित्यानंद प्रभु के अनुरोध की वजह से हुआ। ऐसे लीला तो कभी और वर्णन करेंगे ये अगले दिनों में, लेकिन तत्व में ऐसा है कि जगह मध्य अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं भगवान को महाप्रभु को, महाप्रभु आपने अनेकों लोगों को उद्धार किया, बड़े राक्षसों को उद्धार किया, लेकिन हमको उद्धार करके आपने आपकी जो अन्य उद्धार करने की लीलाएं वो सब फीका पड़ गए। कंस को मारे, हिरण्यकश्यप को मारे, आपने कितने लोगों कितने असुरों को रावण को वध किया, सब कुछ किया, सबके अंदर कुछ ना कुछ गुण था, हमारे अंदर कुछ भी गुण नहीं है, और आपने क्या किया? हमको उद्धार किया, हमको उद्धार करके क्या किया? सारे लीलाएं आपके फीके पड़ गए, सारे उद्धार करने की लीलाएं फीका पड़ गया। तो चैतन्य महाप्रभु का करुणा को भी प्रकाशित करने की जो जो क्षमता है वो नित्यानंद प्रभु में है। चैतन्य महाप्रभु मन में जब संन्यास देने का विचार आया उस समय चैतन्य महाप्रभु सबसे नित्यानंद प्रभु पास आए, अपनी अकेले मिलकर नित्यानंद को हाथ पकड़े। नित्यानंद प्रभु मालूम पड़ा चैतन्य महाप्रभु मन में क्या चल रहा है, प्रभु आप बताइए क्या करना, अच्छा विचार है। महाप्रभु ने कहा मैं किसके लिए प्रकट हुआ हूं? मेरा प्राकट्य हुआ है सारे जीवों को उद्धार करने के लिए, और अभी ऐसा स्थिति है मैं अभी बंद गया हूं नवद्वीप में, सारे जगत को उद्धार कैसे होगा? इससे नित्यानंद को अपने हाथ हाथ को अपने हाथ में रखे, नित्यानंद मुझे लग रहा है मुझे संन्यास दूंगा। नित्यानंद ने कहा महाप्रभु आप तो भगवान हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन आपने सोचा कि अगर आप नवद्वीप से निकल जाएंगे चले जाएंगे तो आपके भक्त इधर अपना प्राण को संभाल के रख सकते हैं? तो बहुत सुंदर चर्चा हुई नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु बीच में। तो नित्यानंद प्रभु को ने कहा चैतन्य महाप्रभु आप मेरे साथ चलें, मैं संन्यास लूंगा, संन्यास के बाद आप मेरे साथ रहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ नित्यानंद रो रहे। संन्यास देने के बाद संन्यास देके वो निकलते पूरा पूरी पहुंचे, पूरी तक नित्यानंद रो पहुंचे, नित्यानंद रो साथ में रहे। दक्षिण भारत की यात्रा में नित्यानंद रो नहीं थे, उत्तर भारत की यात्रा में नित्यानंद रो नहीं थे, बस बाद में अंत लीलाओं में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रो साथ में थे। लेकिन अंत में पुरी में लीलाएं जब कर रहे थे, एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद रो कहा आप आओ, आप जाओ बंगाल में जाओ, आप विवाह करो। विवाह करके क्या करोगे? बंगाल में कृष्ण प्रेम को प्रदान करो, कृष्ण प्रेम का प्रचार करो। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु को आदेश दिए, नित्यानंद प्रभु बंगाल गए। बंगाल में उनका विवाह हुआ, जानवर वसुधा उनके साथ विवाह किए। विवाह करके नित्यानंद प्रभु बंगाल में पूरा उन्होंने प्रचार किया। तो ये नित्यानंद तत्व है, ये गुरु तत्व है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जो व्यक्ति अपने गुरु को आदेश को मानता है, गुरु के आदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करता है, उसके जीवन में कभी कभी नहीं होगी, नेवर देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन हिज लाइफ। ये नित्यानंद प्रभु का लीलाओं का विशेषता है, स्पेशलिटी है। वही बलराम जी हम सबके उद्धार के लिए, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य लीला में कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु रूप में आए, वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। तो नित्यानंद प्रभु के बारे में एक बहुत सुंदर भजन गाया गया था अभी, कोटि चंद्र सुशीतला निताय पद कमल। ये नित्यानंद प्रभु का जो चरण कमल है वो कोटि चंद्र सुशीतल है, सुशीतल। क्यों? क्योंकि वो कभी भी क्रोधित नहीं होते। चैतन्य महाप्रभु ने क्रोध को प्रकाशित किया जगह माता के समय, लेकिन नित्यानंद प्रभु वो चोट खाने के बाद जो उन्होंने कहा महाप्रभु आप शांत हो जाइए, यानी अगर महाप्रभु पूरा करुणा का सागर है तो उस सागर को प्रकाशित करने वाले वो नित्यानंद प्रभु है। और नित्यानंद प्रभु के पास ऐसा शक्ति है, जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु का शरण लेता है तो उनके हृदय में वैराग्य प्रकट होता है, यू बिकम राउंड वेरी। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, जब से नित्यानंद प्रभु कृपा प्राप्त हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी अपने घर में नहीं रहे, एक कुटी में रहने लगे पिताजी के पास। पिता ने कहा कि इधर सब लोग साधु हैं, उन सबको आनंद मिल रहा है, मुझे आनंद नहीं मिल रहा है। पिताजी ने कहा कि क्या ऐसा आनंद है कि आपको नहीं मिल रहा है, मैं प्रदान करूंगा। उन्होंने कहा कुटिया में रहने का आनंद नहीं मिल रहा है तो कुटिया में रहो, कुटिया में रहने लगे। तो नित्यानंद प्रभु के ये जो बल है, ऐसा बल है जिस व्यक्ति को निताय के बिना ये चैतन्य महाप्रभु प्राप्त नहीं होते। इसलिए हम जब प्रणाम करते हैं गौर निताय को, सबसे पहले नित्यानंद प्रभु प्रणाम करना चाहिए, बाद में चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु का प्रणाम क्या है? ऐसे अनेकों प्रणाम मंत्र है, एक मंत्र आप याद रख सकते हो। नित्यानंद वंदे कर्णे लंबित कुंडलम चैतन्याग्रज रूपेण पवित्रीकृत भूतलम। नित्यानंदम अहम वंदे, मैं नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं जो कर्णे लंबित कुंडलम बड़े कुंडल धारण किए हुए लंबित कुंडल चैतन्याग्रज रूपेण, चैतन्य महाप्रभु को बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए और पवित्रीकृत भूतलम, सारा जगत को वो पवित्र कर सकते हैं। ये नित्यानंद प्रभु का विशेष कृपा है। तो ये रविवार को उनका प्राकट्य दिवस है, उसमें उनके जो अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं उस दिन और विस्तार से चर्चा करेंगे, किस प्रकार हमने शिवासांगन में चैतन्य महाप्रभु से लीलाएं की, किस प्रकार नित्यानंद प्रभु शिवासांगन में लीलाएं की, किस प्रकार नित्यानंद प्रभु लीलाचल में महाप्रभु के साथ लीलाएं की, लीला का ताकत चर्चा करेंगे। सत्य के रूप में जानना चाहिए, वही बलराम नित्यानंद रूप में प्रकट हुए। एक राक्षस असुर था, द्विविध राक्षस, ये द्विविध था रामायण के समय में, रामचंद्र का भक्त था लेकिन लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या थी। तो लक्ष्मण के प्रति ईर्ष्या होने के नाते वही द्विविद जो राम का भक्त था वो कृष्ण प्रकट हुए उस समय वही द्विविद जो है राक्षस बन गया और उसको बलराम जी ने मार दिया। यानी जो लोग भगवान को मानते हैं भगवान की विश्वास है लेकिन गुरु में विश्वास नहीं है वो व्यक्ति जो है असुर माना जाता है। वैसे ही जो चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं या चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार करते हैं चैतन्य का भक्त हूं लेकिन नित्यानंद प्रभु का भक्ति को स्वीकार नहीं करते वो जो है वो असुर है। तो इसलिए भगवान को स्वीकार करना अर्थ क्या है गुरु के माध्यम से स्वीकार करना। चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने का अर्थ क्या है वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा स्वीकार करना चाहिए। तो गौर पुण्य मनाना का अर्थ क्या है नित्यानंद त्रयोदशी मनाना चाहिए। श्री राधा गिरधार भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामय की गौर निखाय की। तो ये हमारी सिद्धांत है गौड़ी वैष्णव सिद्धांत है। निताय बिना निताय के बिना हमारा कुछ नहीं है ये सार बात है। कभी हम इधर समाप्त करते हैं वो कल से है रोज यही नित्यानंद लीला की चर्चा चलेंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु लीला चैतन्य महाप्रभु है नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु एक महाप्रभु है दो प्रभु ये पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य तीनों विश्व तत्व है। गदाधर पंडित को राधारानी का अंश अवतार है शक्ति आवेश अवतार है और नारद जी जो है वही श्रीवास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो ये नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा परिचय तत्व का निरूपण हम इधर समाप्त करेंगे। कल से आप रोज 7:30 से 8 बजे तक नित्यानंद प्रभु का और भजन है धन मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र। नित्यानंद प्रभु मेरा वास्तविक धन है और पति जो है मेरा वास्तविक पति कौन है चैतन्य महाप्रभु ऐसे सुंदर भजन है। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय ये भी अच्छा भजन है। नित्यानंद काष्टकम इन सबको हम करने जाएंगे और खास करके रविवार को सुबह भागवतम में और दोपहर को भी नित्यानंद चरित्र बारे चर्चा करेंगे। नित्यानंद प्रभु की जय श्री प्रभुपाद की जय।